पवित्रता के राह पर, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है।
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर।
ओम शांति। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कभी एक बहुत बड़े संत हुए थे जो कबीर जी के समकालीन थे और मीरा ने जिसे अपना गुरु माना है, रैदास। उनके जीवन में एक प्रसंग है। वो जूते बनाने का काम किया करते थे और एक बार कुछ पंडित उनके घर के वहां से जा रहे थे और उनसे कहा कि हम गंगा के तट पर गंगा स्नान करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि रैदास या रविदास भी उनको कहते हैं, अपने कार्य में निष्णात थे और ईमानदार थे और उन्हें किसी के जूते बनाकर देने थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मेरी ओर से ये 4 सुपारी ले लो और गंगा मैया में डाल देना। तो वो पंडित, एक पंडित वो लेता है और वो चले जाते हैं। दिखाया है कहानियों में कि एक पंडित जिसने वो 4 सुपारियां ली थी, जैसे ही वो गंगा जी में डालता है और कहता है कि ये रैदास ने आपके लिए भेजा है, और तुरंत गंगा मैया प्रकट हो जाती है और गंगा मैया कहती है, मैं अपने भक्त से बहुत प्रसन्न हूं, तुम उस भगत को ये एक सोने का कंगन दे देना मेरी ओर से। तो वो पंडित उस कंगन को लेता है, सोने का वो कंगन है और गंगा मैया ने दिया है रैदास को देने के लिए, परंतु मन में लोभ उत्पन्न होता है, सोचता है इसको मैं खुद ही रख लूं, और घर जाता है और उसकी पत्नी उसे और अच्छी एक आइडिया बताती है, तरकीब, कि इसको यदि तुमने राजा को भेंट कर दी तो उपहार में बहुत सारा कुछ मिल सकता है तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तो वो उसी अनुसार राजा के पास पहुंचता है और राजा को वो कंगन भेंट देता है। राजा की पत्नी रानी जब वो कंगन देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो कहती है, अब मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए, ये तो एक ही तरफ का है। तो मुश्किल खड़ी हो जाती है पंडित जी के लिए, क्योंकि गंगा मैया ने तो एक ही दिया, अब गंगा कहां से फिर प्रकट होगी और देगी, और वो भी दिया था उसके लिए। तो फिर बहुत पश्चाताप होता है, घर आता है, कहता है अब क्या करूं और क्या नहीं। रैदास के पास जाता है, क्षमा मांगता है, सारी कथा वृत्तांत रैदास को सुनाता है। अब कहता है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो रैदास अपनी कटौती निकालते हैं, कटौती अर्थात काठ का बना वो पात्र, और उसमें जल डालते हैं और गंगा मैया का आह्वान करते हैं और गंगा मैया वहीं पर प्रकट हो जाती है और दूसरा कंगन भी दे देती है। तब से ही एक कहावत प्रसिद्ध हुई, कौन सी? मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन के इरादे नेक हो, यदि मन पवित्र हो, तो सब कुछ स्वतः ही आ जाता है। यदि मन स्वस्थ है, यदि मन तंदुरुस्त है, यदि मन हेल्दी है, यदि मन में संपूर्ण पवित्रता समाई है, टू दी प्योर माइंड एवरीथिंग इज प्योर। ये इस कहावत का अर्थ है। तो आज की इस भट्टी की शुरुआत हम यही से करते हैं। क्या हम करें जिससे ये मन चंगा, स्वस्थ, निरोगी, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध बन जाए। जहां मन स्वस्थ है सब कुछ स्वतः प्राप्त है। जहां मन ही रुग्ण है, मन में ही विकार रूपी बीमारी है, मन में विकारों का विष है। आज सुबह की मुरली विष, वहां गंगा तो दूर, पानी भी नहीं मिल सकता साधारण। इस ब्राह्मण जीवन का जो आधार है वो संपूर्ण स्वच्छता है, संपूर्ण पवित्रता है। और ये भट्टी का एक लक्ष्य वही है कि मन को शुद्ध करना, मन का पवित्रीकरण करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। और बिना परमात्मा प्रेम के वो पवित्र भी नहीं हो सकता। राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अंदर जो मल है, विकार का विक्षेप है, आवरण है, परमात्मा प्रेम के सिवा नहीं जा सकता। भट्टी का लक्ष्य है फिर से हृदय में परमात्मा प्रेम उत्पन्न कर लिया जाए, फिर से तप के उस मार्ग पे आया जाए, फिर से स्वयं को ठीक करना, फिर से जो जो कमियां अंदर है उसको भरना, फिर से देखना, फिर से हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। इसके लिए कठिन नहीं है। अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में, 12 तारीख रिकॉर्डेड मुरली 2/2/2002 की, तीन निशानियां बाबा ने बताई स्वच्छता की, पवित्रता की, दृष्टि, वृत्ति और कृति। चार कालों की यात्रा कराई, अनादिकाल संपूर्ण पवित्र, सबसे चमकते हुए तुम, जैसे आकाश में कोई सितारा चमकता है वैसे तुम परम धाम में चमकने वाले हो, शिव बाबा के एकदम नजदीक। फिर देव स्वरूप आदिकाल, उसमें भी तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी, तुम्हारे जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं, ऐसे प्यारे देवता तुम थे, उस देव संस्कृति में तुम थे, उस देव लोक में तुमने अपना जीवन बिताया है। भगवान आकर स्मरण दिला रहे हैं, तुम ये नहीं जो समझ रहे हो, अमृतस्य पुत्राः, अमृत की संतान हो। आए धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। देवताओं में जो चमक है वो तुम्हारी है। मध्यकाल पूज्य स्वरूप, ऐसे चित्र किसी और के हो नहीं सकते। धर्मात्मा, धर्म स्थापक और अभिनेता जैसे तुम्हारे हैं, जैसी विधि पूर्वक पूजा तुम्हारी होती है और किसी की नहीं, यह तुम्हारी पवित्रता ही है जिसके सामने सारा संसार झुक रहा है। अंतिम काल संगम, परमात्मा प्रेम, परमात्मा पालना और परमात्मा पढ़ाई केवल तुम्हें ही मिलती है। आज सुबह भी कहा भगवान पढ़ा रहे हैं इस पाठशाला में भगवान और भगवती बनाने के लिए। मैं आया हूं स्मृति दिलाने। वरदान में कहा है स्मृति जैसी होगी वैसे समर्थियों का अधिकार प्राप्त होगा, विस्मृति होगी तो व्यर्थ होगा। मेरा बाबा यह मेरापन ही, नई दुनिया नया जीवन देगा। संपूर्ण स्वच्छता या पवित्रता के तीन आधार बनाए और बाबा ने कहा आईने में देखो, एक मिरर में देखो मेरी पवित्रता कितनी परसेंटेज में है। तीन आधार कौन कौन से थे? दृष्टि, वृत्ति और कृति। अभी अभी संडे में भी मुरली चली थी पवित्रता पर। पवित्रता के दो आधार या तीन, स्मृति और दृष्टि। वृत्ति भी बताई, उसका वर्णन नहीं किया। दैहिक दृष्टि, दैहिक दृष्टि यदि जा रही है, यदि ये कह रहे ये सेवाधारी अच्छा है, ये शिक्षक अच्छी है, अच्छा क्या है, अच्छा ही है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ दृष्टि। यह दैहिक दृष्टि जाना भी क्या है? महा महा महापाप। यह दैहिक दृष्टि जाना भी क्या है? सुनहरी मृगमाया। यह दैहिक दृष्टि भी जाना भी क्या है? पाप की लकीर को लंबी करते हो। एक पाप दूसरे पाप को आकर्षित करेगा, एक विकार दूसरे विकारों को लाएगा। स्वयं भी वियोगी बनोगे और दूसरों को भी वियोगी बनाओगे। फर्स्ट पाठ है इस विद्यालय का संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण स्वच्छता। सफेद कागज पर काला दाग होगा और पवित्रता का कोई भी कर्म, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। अपवित्रता की यह चोट बहुत भारी चोट पड़ेगी। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी। चित्र देखा होगा आपने बाप दादा का, कई सारे सेंटरों पर लगा हुआ है। पवित्रता के विषय में बाबा के कड़े महावाक्य, जो सजा जेल में भी नहीं खाई होगी वो धर्मराज के द्वारा दिलाई जाएगी। इसलिए इस भट्टी में अपनी संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण स्वच्छता, कंप्लीट प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करना है। साकार महावाक्य है बाबा के। बाबा, मां बाप कह रहे हैं शादी करो, बाप कहते हैं यदि सिर भी काटना पड़े तो पवित्रता के धर्म को नहीं छोड़ना। तो आज के इस क्लास में संपूर्ण पवित्रता की, संपूर्ण मन को स्वस्थ चंगा हेल्दी प्योर बनाने के लिए ऐसी 21 बातें हम आपको बताएंगे। वो सारी 21 बातें आप उसको एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं, जो कि हर रात सोने से पहले चेक करना है। ऑल द 21 पॉइंट्स। इन 21 बातों में से किसी भी एक बात में यदि पवित्रता का खंडन होता है तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो वो हमको बनाने आया है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, हम पतित के पतित ही रह जाएंगे। क्या ये अच्छा लगेगा कि संसार वाले कहेंगे ये देखो ये वो आत्माएं हैं जिनको भगवान ने सिखाया, भगवान ने अपनी वंडर पार्ट फुल पाठशाला में इनको एडमिशन दी, ये भगवान की पालना में पले और फिर भी लास्ट में इनके मस्तक पर स्टैंप लगा है पतित। भगवान यदि कहे ये दो लाइन है, एक पवित्रता की एक अपवित्रता की, क्या हम कहां हम जाएंगे? क्या भगवान से भी झूठ बोलेंगे? क्या उसको भी धोखा दे सकेंगे? मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, विश्व को संसार को धोखा दिया जा सकता है, क्या भगवान को भी धोखा देंगे? ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर। बाइबल में लिखा है वो जिसने तुम्हें कान दिए क्या वो नहीं सुनेगा, वो जिसने तुम्हें आंख दी क्या वो नहीं देखेगा। बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूं पर वो है। बाबा कहते हैं मैं थॉट रीडर नहीं हूं पर वो है। है या नहीं है? भक्ति में कहते हैं यदि यह चींटी, छोटी सी चींटी, उस चींटी के पैर में यदि घुंघरू हो तो उसकी आवाज भी उस तक जाती है। बाप को सच सच सुना दो, माफी होगी। यदि छुपा के रखोगे, यदि घाव को छिपा के रखोगे तो नासूर होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और डेथ। सबसे पहली पवित्रता है संकल्प की पवित्रता। जब तक संकल्प पवित्र नहीं, बोल पवित्र नहीं हो सकते, कर्म पवित्र नहीं हो सकते। सबका आधार संकल्प है, भावनाओं का भी आधार संकल्प है, स्मृतियों का भी आधार संकल्प है। अपने संकल्पों को प्योर करना, उसके लिए शक्तिशाली संकल्पों को ढूंढना पड़ेगा, मुरली से, क्लासेस से, लिख के रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, याद करके रखने पड़ेंगे कुछ संकल्प। जो जो पावरफुल वाक्य मुरली में आते हैं उनको अलग से एक डायरी में लिख के रखना है, उसको कई बार रिवाइज करना है। तब तक रिवाइज करो जब तक वो याद ना हो जाए, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः, वर्बैटिम, वैसे के वैसे याद ना हो जाए। कुछ कुछ महावाक्य बाबा के इतने शक्तिशाली है, इतनी परमात्मा वाइब्रेशंस और एनर्जी उन महावाक्यों में है, उनके केवल उच्चारण मात्र से शक्ति आ जाती है। भक्ति में पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ऐसे शक्तिशाली पावरफुल महावाक्य मुरली से उठाने हैं, उन्हें अपना बनाना है। तब तक उसे रिवाइज करना है जैसे कोई छोटा स्कूल का बच्चा पोएट्री कैसे रिवाइज कर लेता है। बचपन में याद की हुई चीजें आखिरी तक उसे याद रहती है। कोई नींद से भी जगा कर कहे कि बताओ आज की मुरली में क्या था, तो आना चाहिए। क्या हम कभी अपने नाम को भूल जाते हैं? कोई रात में आकर उठाए और पूछे तुम्हारा नाम क्या है, हम क्या कहते हैं? अभी रुको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो स्वप्न में था। कितना अंदर वो चला गया है, रग रग में वो समा गया है। वैसे परमात्मा महावाक्य हमारे हृदय में समा जाए, हृदय पटल पर, मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाए, तब कथा अमृतम, उसके जो शब्द है अमृत है, नेक्टर। तो शुरुआत करनी है संकल्पों से, चेक करो। बाबा ने कहा है दो पहरेदार रखो, अटेंशन और चेकिंग। ये दो पहरेदार घूमते रहे, उन दोनों के हाथ में एक सीसीटीवी कैमरा, उसमें सब दिखता रहे, अरे तुम्हारा ये संकल्प गलत हो रहा है, ठीक करो, नहीं ठीक करोगे तो फिर बोल में जाएगा, फिर कर्म में जाएगा, चलन में जाएगा, संस्कार बनेगा और फिर दुख, और फिर चिल्लाना पुकारना। इस संसार में दुख ही दुख है। क्यों है? संकल्प ही वैसा है। संकल्प बीज है। जमीन में कौन सा बीज बोया जा रहा है? हमारा मन, अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि है, उसमें जो डालोगे वो उगेगा। विकार का बीज डालो वैसे ही स्वप्न आएंगे, वैसा ही सब कुछ होगा। घृणा का बीज डालो वैसा ही सब कुछ होगा। श्रेष्ठ संकल्पों का बीज, संडे की मुरली, स्मृति याद रखो, मैं केवल आत्मा नहीं हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। जैसी स्मृति होगी वैसा सब कुछ होगा। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, और श्रेष्ठ संकल्प कहां से ढूंढेंगे? अव्यक्त मुरलियों के अध्ययन से। संसार वालों के पास श्रेष्ठ संकल्पों का अकाल पड़ा हुआ है संसार में। किसी को पूछो श्रेष्ठ संकल्प बताओ, वो कहेंगे कौन से श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है? किसी को पता ही नहीं है श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं। सड़क पर जो लोग घूम रहे हैं उनसे पूछो जाकर, श्रेष्ठ संकल्प 10 बताओ श्रेष्ठ संकल्प। किसी को पता ही नहीं श्रेष्ठ संकल्प भी कुछ होता है। वो तो भगवान ने यहां हमको खजाना दिया है। एक दूसरा है बोल की पवित्रता। ऐसे हमारे मुख से बोल ना निकले जो दूसरों को दुख दे, घायल कर दे, अपमान करे, कलंकित करे, इंसल्ट करे, नीचा दिखाए, कमेंट्स करे, आग में घी डालने वाले, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। कोई कहते हैं, हम तो नहीं कहते, दूसरे हमको सुनाते हैं तो हम क्या करें। परंतु परचिंतन रोमिंग की तरह है, कॉल रिसीव भी करोगे तो कटेगा। तुम्हारे पास आ ही इसलिए रहा है क्योंकि तुमने पहली बार सुना था उसका, तुमने इंटरेस्ट दिखाया था। और क्या हुआ, उसने आके कहा तुमको पता है कि नहीं, तुमको तो कुछ भी पता नहीं रहता है, इसने ये किया, हमने किया, अच्छा और क्या किया, फिर और बताएगा, फिर ये सभा पूरी हुई, अब कल मिलेंगे इसी समय, आगे की बातें बहुत है। हमारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, क्या हो, प्यूरिटी के प्रकंपन। हमारे बोल सुखदाई हो, समान वाले हो, वरदानी हो, श्रेष्ठ हो, प्रेरणा देने वाले हो, किसी को गिराने वाले नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है उसको ऐसा कह देना कि वो गिर ही जाए नीचे। बोल में विकारों की वायु न हो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ऐसे बोल नहीं, ऐसे जोक्स जिसमें विकार है, व्यर्थ है और निगेटिव है, शेयर करते रहते हैं, सेंड सेंड सेंड। उस चक्र में यदि हम भी है, ये भी अपवित्रता है। तीसरा, कर्म की पवित्रता। विकारी कर्म तब होते हैं जब आत्मा बेहोश हो जाती है। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहाभिमान, जब मूर्छित हो जाती है, भूल जाता है ज्ञान और योग, केवल पता है थोड़ा थोड़ा बाप आए हैं वगैरह वगैरह बस। परंतु ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, उस विस्मृति की अवस्था में विकर्म, पाप, कुकर्म, सिंफुल एक्ट्स और फिर पश्चाताप। वहां तक पहुंचे ही क्यों? क्योंकि संकल्पों को ठीक नहीं किया था। वहीं ठीक कर लिया होता तो रुक गए होते, वो आवेग, वो फोर्स, वो वासना उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए स्वयं को सेवा में लगा दो। कुछ भी नहीं समझ रहा है क्या किया जाए, मुरली नहीं पढ़ी जा रही है, ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा है, स्थूल सेवा में स्वयं को लगा दो। कम से कम पाप तो नहीं होंगे, विकर्म तो नहीं होगा। स्थूल सेवाएं ले लो मधुबन में या तो सेवा केंद्र पर, उतना समय तो विकर्म से बचे रहेंगे और कुछ ना कुछ तो पुण्य होगा ही। चौथा, संबंध संपर्क की पवित्रता। ऐसे किसी पुरुष से या किसी स्त्री से संबंध बना के ना रखो कि जिसमें विकार के आने की गुंजाइश हो। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, माताएं अपने आप को क्या समझे, शिव शक्ति, और कुमार अपने आप को समझे महावीर। महावीर है राम के, शक्तियां हैं शिव की। अपने रिलेशंस और कनेक्शंस, संबंध और संपर्क को पवित्र बनाते जाओ। यदि किसी से ऐसे संबंध जुड़ गए हैं जिसमें विकार है, स्टॉप, स्वयं को अब खुद रोक दो। यहां पर करुणामयी स्नेहमयी रहम दिल नहीं बनना है, यहां पर विकराल रूप धारण करना है महाकाली का। उसकी हिम्मत हमने ही बढ़ाई है, हम कहीं ना कहीं सहयोगी थे इस संबंध में, जिसके कारण उसके मन में भी वासना उत्पन्न हुई। आकाश किसे गिरने वाला जल बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, जमीन भी बहुत अच्छी है, स्वच्छ है, परंतु दोनों मिलते हैं वहां कीचड़ बनता है। पांचवा, चलन, बिहेवियर, ऐसी बिहेवियर, ऐसी चलन, ऐसी चाल चलन, ऐसे मैनर्स ना हो कि जिससे लगे इनमें पवित्रता की कमी है, जिससे लगे दीज आर इनडिसेंट पीपल, जिसमें रूहानियत ना झलके, जिसमें रॉयल्टी ना हो। बहुत जोर से हंसना और बहुत रोना, क्या ये पवित्रता है? बहुत उतावलापन, बहुत उत्तेजना, क्या यह पवित्रता है? ये पांच, पांच के बाद प्लस टू, एक फॉर्मूला ऊपर लिख के रखो, फाइव प्लस टू प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, पांच अधिक दो अधिक दो अधिक चार, चार और चार, ऐसी 21 बातें। ये थी पहले पांच, अभी दो, तन की पवित्रता और धन की पवित्रता। मन हो गया संकल्प में, हमारा यह देह संपूर्ण पवित्र है। इस पवित्र देह में पवित्र आत्मा है, किसी को इतना अधिकार नहीं देते ना कि यह देह को अपवित्र करे, अनटच्ड रहे, अस्पर्शित, और ना ही इस देह को भोग और विलास में, संसार के खान पान में डुबो देना है। देह दी है तुम्हें तपस्या करने, बाबा कहते हैं यह शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से बहुत जन्मों के बाद ये संगम युगी जन्म मिला है। इस जन्म में इस देह में तपस्या करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, ना तो विकार में इसे डुबाना है, ना तो खान पान में इसे डुबाना है, और ना ही इसे इतना सताना है, इतना सताना है कि वो दुर्बल हो जाए। ऐसी तपस्या भी नहीं करनी है। सेंट फ्रांसिस हुए थे कभी विदेश में, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उन्होंने मरते समय एक बात की थी अपने शरीर के साथ और कहा, हे मेरे शरीर, मैं तुझे बहुत धन्यवाद देता हूं पर मुझे माफ करना, सारे उम्र भर मैंने तुझे बहुत सताया, कितने उपवास किए, क्या क्या किया, पर मैं ये तो भूल ही गया कि तुझ में ही तो मुझे प्रभु से मिलन हुआ तेरे कारण, जब मैं तुझ में बैठा था। धन्यवाद दिया अपने शरीर को, इसके लिए इस शरीर रूपी घोड़े को संभाल करनी है, इसे ठीक से चलाना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं ओवर केयरिंग ओवर टैम्परिंग करना है और उसे भोगी बना देना, ना ही इसको इतना मारना कि बेदम होकर घोड़ा गिर पड़े। संभाल, देखरेख, देखभाल, स्वस्थ रखना, तो ही कटौती में गंगा उतरेगी, नहीं तो नहीं। यदि शरीर ही बीमार पड़ जाए तो काहे का योग और काहे का ज्ञान, सब एक तरफ। तेज सिर दर्द हो रहा है, याद आती है बाबा की, किन किन को आती है बीमारी की हालत में, महान योगी ही होंगे वो सारे। शरीर तो और खींचता है बीमारी में, तेज बुखार 104, और उसको कहो अभी बाबा को याद करो, बाबा बुद्धि नीचे ऊपर ही नहीं जाती, इधर ही घूमती रहती है, परंतु बीमारी का आह्वान भी हम स्वयं करते हैं। जब जब चेतना प्रकृति के विरुद्ध जाएगी बीमारी आएगी, जब जब हम प्रकृति के साथ है, जब जब प्रकृति के बहुत समीप है, तब तक बीमारी आ ही नहीं सकती। व्यक्ति ने सारी बीमारियां आह्वान की है, जितना हम खाते हैं उससे आधा पेट हमारा भरता है और आधा डॉक्टरों का, परंतु रहम बहुत है डॉक्टरों पर, हम नहीं चाहते कि उनकी दुकान बंद हो जाए, इसके लिए हम वो सारी चीजें खाते हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं और उनका डैश 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 चालू रहता है। तन की पवित्रता, फिर है धन की पवित्रता, कैसे कमाया जा रहा है धन, बाबा के लिए बहुत कुछ करना है परंतु उस करने की होड़ में गलत मार्गों पर आत्मा चली जाती है, किसी का शोषण करके अगर धन आ रहा है, हम कहते हैं हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, फिर भोग लगाते फिर खाते हैं, पर जो धन आ रहा है वो यदि काला धन है तो वो परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं है। फिर कितना भी भोग लगाओ या क्या करो, किसी को पीड़ा देकर यदि धन आ रहा है, शोषण हो रहा है किसी का, गलत मार्ग से आ रहा है, भगवान को वो धन नहीं चाहिए, उसे तो भावना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योम्या भक्त्या प्रयश्यति, हे अर्जुन, यदि कोई अनन्य भाव और भावना से मुझे पत्र पुष्प और फल दे दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। बाप उस महफिल में आए हैं साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जहां पर 56 प्रकार के भोग बनते हैं वहां बाप नहीं जाते, बाप गरीबों की महफिल में आए हैं जहां पर सुखी रोटी बनती है। धन की और धन की, अगले दो, बुद्धि की पवित्रता और संस्कार की पवित्रता। बुद्धि में हम क्या धारण कर रहे, क्या दिखा रहे हैं इसको, क्या सुन रहे, क्या देख रहे, वो सारा बुद्धि अंदर से भोजन कर रही है। डिसीजन क्यों हमारे गलत हो रहे, क्यों जीवन में हम निर्णय नहीं कर पा रहे, ये करूं या वो करूं, हर बार निर्णय करने के बाद क्यों पश्चाताप करना पड़ता है, वो दिव्य बुद्धि कहां चली गई, शायद वरदान नहीं लिया है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो, ये बुद्धि बर्तन है और सोने और शेरनी का दूध यदि इसमें ठहराना है तो क्या करना पड़ेगा, सोने का बनाना पड़ेगा। बुद्धि में अस्वच्छता जो भरी है, किचड़ा जो है, व्यर्थ का, निगेटिव का, विकार का, परचिंतन का, परदर्शन का, उस सब की सफाई उनकी है। हाथ की सफाई तुम्हारी है, बुद्धि की सफाई। अभी अभी वरदान आया था। फिर है संस्कारों की पवित्रता। लंबा समय से यदि कोई विकर्म करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, दिल धीरे धीरे अंदर से खाना बंद कर देता है, नहीं तो वो चोट लगती है, पर पाप बार बार व्यक्ति करता रहेगा, फिर वो संस्कार बन जाता है और वो विकर्म करते करते अपवित्रता का संस्कार बन जाता है। फिर व्यक्ति चाहता नहीं है। दुर्योधन कहता है, मुझे सब पता है, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब गलत है, परंतु हे गोविंद मैं क्या करूं, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं रोक नहीं पाता हूं। क्या मुझे पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है? मुझे पता है पर मैं रोक नहीं पा रहा हूं। वही दुर्योधन की सी अवस्था हमारी होगी कि पाप करेंगे, विकर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, पर स्वयं को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि संस्कार बन गया है। ये दो। फिर चार, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें। दृष्टि के पर, दृष्टि पर बाबा ने पूरी मुरली चलाई संडे। तुम्हारी दृष्टि आत्मिक हो, दृष्टि से क्या देखो, ये सभी त्यागी और तपस्वी आत्माएं हैं। अगर देहभान की दृष्टि जाती है, अगर कोई इशारा देता है, इशारे से इशारे को खत्म करो, फुल स्टॉप लगाओ। इस बहस में नहीं जाओ कि है कि नहीं है, फुल स्टॉप। अपनी दृष्टि को शुद्ध करते जाओ। नयन, ये नयन इस देह को ना देखे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, शरीर सांप है और सांप में विष होता है, केवल मस्तक मणि दिखाई दे, बस। क्या देखना है इस देह में? गंदगी। किस चीज से बना है यह देह? हड्डी, मांस, मल मूत्र, कुछ देखने जैसा है इसमें? इस चमड़ी के पीछे क्या है? चमड़ी निकाल कर देखो क्या दिखेगा। इतना ही यदि प्रभावित करने जाओ सरकारी अस्पताल में, जनरल वार्ड में मरीजों को देखो, कैंसर के मरीज क्या हाल है, कहां है सौंदर्य, जाकर उन वृद्धाश्रम में बूढ़ों को देखो, कहां दांत नहीं है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाते। यह है सौंदर्य इस देह का। फिर भी सारा संसार इस देह के पीछे पागल है। सारा मीडिया, सारी फिल्में, सारे उपन्यास, सारे नॉवेल्स, सब कुछ इस देह पर केंद्रित है, इस जिस्म पर। दृष्टि को पवित्र, वृत्ति स्वतः ही पवित्र होगी जब दृष्टि पवित्र होगी तो। वृत्ति अर्थात वो तरंगे जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं बाहर से कोई चीज आने के बाद, वृत्ताकार वृत्ति, वो रिपल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता इज नोन एज वृत्ति। चित्त के अंदर जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उसे वृत्ति कहा गया है। उसमें स्वतः ही पवित्रता आएगी और वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तीसरा, दृष्टिकोण। पहले से ही फिक्स्ड आइडियाज बना के नहीं रखनी है चीजों के बारे में, ये बहन ऐसी ही है, ये भाई ऐसा ही है। अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक कर देना है, प्योर एटीट्यूड्स को प्योर करना है। आदतें, हैबिट्स, ऐसी कोई आदत ना हो विकार की कि पता है ये आदत अगर लंबा समय चले तो पाप हो सकता है, उसको वहीं रोक देना है। क्रिएट न्यू हैबिट्स, नई आदतों का निर्माण करना है। सेवाओं की आदतें, ज्ञान सुनाने की आदत। कल की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कुमारियों को प्रैक्टिस करनी है भाषण देने की। यह कोई नहीं कह सकता हम ज्ञान सुना नहीं सकते, इसका मतलब तुमने समझा ही नहीं है। साकार महावाक्य कई बार आते हैं। ज्ञान सुनाने के नए संस्कार, ज्ञान सुनने के नए संस्कार, सेवा करने की नई आदतें, ये नई आदतें, न्यू स्पिरिचुअल हैबिट्स का निर्माण करना है। न्यू स्पिरिचुअल हैबिट्स, नई आध्यात्मिक आदतें, तो वो जो विकार की आदतें हैं स्वतः ही दब जाएगी, लीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये चार, फिर और चार, भाव या भावना, दूसरा स्मृति मेमोरीज, तीसरा कल्पना और चौथा ड्रीम्स स्वप्न, इन चारों की पवित्रता। पहले भाव की पवित्रता या भावना की पवित्रता, अपनी भावनाओं को शुद्ध करते जाओ। किस तरह की हमारी भावना है आत्माओं के प्रति? यदि भावना ठीक नहीं तो परिणाम भी ठीक नहीं होगा। भावनाओं का शुद्धिकरण, उसमें घृणा समाई ना हो, विकार समाया ना हो, पाप के अंश समाये ना हो। बाइबल में एक जगह लिखा है, यदि तुम किसी की कब्र पर जाते हो और उसको फूल चढ़ाते हो और उस व्यक्ति के प्रति जो मर चुका है उसके प्रति तुम्हारे मन में घृणा है, अपने फूल वहीं छोड़ो, पहले जाओ और उससे माफी मांगो या माफ कर दो, अपने आप को शुद्ध करो और फिर आकर देन पे होमेज टू हिज ऑल्टर। हृदय में किसके प्रति हमारे मन में घृणा तो नहीं, नफरत तो नहीं? भावनाओं का शुद्धिकरण। दूसरा व्रत है स्मृतियां, अभी सब कुछ पवित्र है पर पुरानी यादें है विकार की, उसका क्या? उस पर भी काम करना पड़ेगा। वो जो पुराने विकर्म, पुराने पाप, पुराने भोग, उनकी स्मृतियां है, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। ये सब योग में करने के प्रयोग है। बाबा की किरणें आ रही है और सारी भावनाएं शुद्ध हो रही है, सारी स्मृतियां शुद्ध हो रही है। अगला कल्पना, इमेजिनेशन। व्यक्ति अपनी काम वासना कल्पना से तृप्त करता है, जो जो देखता है, जो जो पढ़ता है, कल्पना करता है, सेंशुअल फैंटेसीज। अपने विजुअलाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी लाना है, न्यू स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन। जो जो मुरली में पढ़ते हो उसको ड्रिल बनाना है, जैसे आज सुबह की मुरली, बाप आए हैं तुम्हें पलकों पर उठाकर ले जाने के लिए। अब इस वाक्य को ड्रिल बना दो और एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करो कि बाबा आया है और वो मुझे उठाकर ले जा रहा है। न्यू विजुअलाइजेशन। अगर स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, मन की आंखों से देखना, तो विकारों को देखना और विकारों के संकल्प और कल्पना करना स्वतः ही आने लगता है, क्योंकि हवाओं में विकार और वासनाएं हैं संसार में। चौथा स्वप्न। स्वप्नों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन बताएगा? या होते ही नहीं, हो सकते हैं? सारा दिन ठीक रखो, स्वप्न अपने आप ठीक होंगे, क्योंकि स्वप्न कहां से निकल रहे? सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहे हैं। सारे दिन भर में जो भी किया है वो स्वप्न में रात में दिखता है। एक, सारे दिन भर में जो कुछ दमन किया है रात में स्वप्न में दिखता है। सारे दिन भर जबरदस्ती अमृत वेला मिस हुआ, आज संकल्प किया भोजन नहीं करेंगे, दिन भर संकल्प किया और फिर भोजन को देखा और कुछ कुछ हो रहा है, पर सुबह तो संकल्प किया था कि आज अमृत वेला मिस हो गया इसलिए आज भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, और रात होते ही स्वप्न में ब्रह्मा भोजन ही ब्रह्मा भोजन। जिस जिस चीज का दिन भर दमन किया, वासना का दमन करो रात में निकलेगी, लोभ का दमन करो रात में निकलेगी। समझा नहीं और वैसे ही बस दबा दिया। जो जो चीज का दबाया जाता है वो रात में निकलता है स्वप्न में, और फिर दूसरे दिन दुखी होते हैं, ऐसा स्वप्न आया कहां से, मेरा तो सब कुछ ठीक था। संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न भी पवित्र। कुछ स्वप्न पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ स्वप्न किसी किसी को दिखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके, द सिक्स्थ सेंस। कुछ कुछ स्वप्न अति चेतन से होते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस से, ऐसे पांच प्रकार के स्वप्न हैं। कुछ सारे दिन भर में जो कुछ हुआ वो रात में दिखेगा, दूसरा जो कुछ दबाया सारे दिन भर में भाव को भावना को वो रात में दिखेगा, तीसरा बचपन से अब तक या पूर्व जन्म में जो कुछ किया वो आएगा, चौथा जो होने वाला है। आखिरी के दो किसी किसी को ही होते हैं, सबको नहीं। जो होने वाला है, कल क्या होने वाला है आज दिखाई देगा। जैसे विदेश की एक महिला थी, उसने स्वप्न देखा कि अखबार में उसकी फोटो छपी है और ऊपर लिखा है उसका एक्सीडेंट होकर वो मर गई। उसने वो पूरी खबर सुबह बताई उनके उसके साथियों को दोस्तों को कि ऐसा मैंने अपने आप को देखा है, अखबार में मेरी फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है मेरी मृत्यु हो गई है। उसी दोपहर में उसका एक्सीडेंट हो गया और शाम को न्यूज़पेपर में, इवनिंग न्यूज़पेपर में वही खबर उसी शब्दों में छपी जो उसने सुबह बताई थी। ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इसको कहते हैं। क्या होने वाला है वो पहले ही किसी किसी को दिख जाता है। ऐसे भी स्वप्न होते हैं चौथे प्रकार के। और पांचवे एक स्वप्न होते हैं जो बहुत रेयर है और योगियों को आते हैं, जो अति चेतन से आते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस से। तो स्वप्नों की पवित्रता फिर है। और चार, सुनने, सुनना, हियरिंग, सुनने की पवित्रता। क्या हम सुन रहे हैं इन कानों से? किचड़ा भर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? विकार की चीजें सुन रहे हैं, संसार के रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? या बाबा के गीत सुन रहे हैं, या परमात्मा प्रेम की कहानियां सुन रहे, त्याग और तपस्या की कहानियां सुन रहे, क्या हम सुन रहे हैं इसकी पवित्रता? यदि ये कान व्यर्थ में लगे हुए हैं तो वो अपवित्र है, वो भी भोजन है, कानों का भोजन। सुनना फिर है। स्पर्श की पवित्रता, टचिंग, किस भाव से टच हो रहा है। जैसे एक मां अपने बेटे को स्पर्श करती, क्या उसमें विकार होता है? वैसी शुद्धता हमारे स्पर्श में हो, इतनी प्यूरिटी हमारे स्पर्श में, जिसको स्पर्श हो ये ना लगे ये स्पर्श विकार का था। तीसरा, खाने की पवित्रता। दिन भर खाऊं खाऊं और म्याऊं म्याऊं, सुबह ये खाया, अब दोपहर में क्या खाना है, अब दोपहर में ये खाया, शाम को क्या खाना है, आज ब्रह्मा भोजन में क्या बनाना है। दिन रात जब से ब्राह्मण बने हैं बुद्धि केवल किचन में ही लगी है, किचन ही मंदिर है और भोजन ही देवता। जब देखो तब खाऊं 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 खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, इधर क्या बना उधर क्या बना, इसमें टेस्ट ऐसा है उसमें टेस्ट वैसा है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। जिन्होंने अपने स्वाद को नहीं जीता, जिन्होंने रसेंद्रियों को नहीं जीता, वो जनेंद्रियों को कैसे जीतेंगे? जो इंद्रिय जीत नहीं वो काम जीत भी कैसे बनेंगे? जिनकी रसनाओं पर नियंत्रण नहीं जिनका, वो उस परम रस का अनुभव भी नहीं कर सकते, वो उस एक रस अवस्था में भी नहीं जा सकते। बाबा ने कहा है मैं दाल रोटी दूंगा, परंतु ब्राह्मणों को दाल रोटी से थोड़ी होता है, बाबा देगा और कहेगा बाबा आप भूल गए अपना वादा। बाबा कहेगा मैंने दाल रोटी का वादा किया था, पनीर और आइसक्रीम और चटनियां और पराठे, इनका वायदा कभी किया था? किसी मुरली में आया है वायदा? किसका आया है? हाँ, तो याद रखना, फिर दुखी मत हो जाना, फिर मत कहना बाबा से बाबा ये आपने क्या कर दिया, हम तो आपके बने थे और ये। दो भाई मधुबन में दिन भर सेवाएं की, इतनी सेवाएं की, इतनी सेवाएं की, रात को 11 बज गए, 11 बजे किचन में पहुंचे, किचन में गए भंडारे में तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े इसमें रोटियां थी वो भी टुकड़े टुकड़े। पहले भाई ने कहा बाबा ये सिला दिया तुमने, इतना हम आपके यज्ञ की सेवा करते हैं और यहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ मैं नहीं खाता, और जाके अपने कमरे में चला गया। रात भर करवटे बदलता रहा, नींद भी नहीं क्योंकि भूखा है। दूसरा पहुंचा बाबा के भंडारे में, देखा रोटियां टुकड़े टुकड़े, बाबा को कहा वाह बाबा कमाल है तुम्हारी, आपने मेरे लिए रोटियां तोड़ कर रखी। इतनी देर से आया उसके बाद भी मिल रहा है, वाह कमाल है तुम्हारी। और भरपेट खाया और मस्ती से आराम से सोया। भोजन हम किस भाव से कर रहे हैं? एक प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछ रहा है, मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? लिख के रखो प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। भोगी जीवन वाले हैं या योगी जीवन वाले हैं, स्वयं को पूछना है। यदि एक दिन जो नाश्ते में था वही दोपहर में मिल जाए और वही शाम में मिल जाए तो अचल अडोल किसकी अवस्था रहेगी? हाथ खड़ा करो। ऐसे मत कर देना, किया है क्या? जो नाश्ते में था वही दोपहर में है और वही रात को है और फिर दूसरे दिन भी बचा हुआ वो है। अब थोड़े हाथ कम हो गए, सब ठंडा ठंडा है और टुकड़े टुकड़े हुए हैं। चलेगा? चलेगा, फिर ठीक है, सब पास। इस सभा में ऐसी कितनी माताएं हैं जो 24 घंटे में एक बार भोग लगाती है? माताएं या कोई, सब पूरी सभा में ये नन्नी नन्नी कुमारियां आप भोग लगाते हो बाबा को? भोजन लगाती है, देखा? और जो नहीं लगाते अपने शिव पुत्र को भूखा ही रख के खुद ही खा लेते हैं, वो हाथ खड़ा करो। बाकी लोग सामने देखना, इधर उधर मत देखो, नहीं तो उठाएंगे नहीं वो। इस भट्टी से एक नवीनता लानी है, कल से 24 घंटे में एक बार भोग अवश्य लगाना है। भगवान भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। जो कुछ बनता है उसको पहले उसे दो और फिर प्रसाद समझ कर स्वीकार करो, आधी पवित्रता यहीं अचीव हो जाएगी। जो घर में विरोधी है वो सब सहयोगी बनेंगे। सुनना, खाना, स्पर्श करना और लास्ट 21 लिखना। लिखने की पवित्रता, क्या मैसेजेस भेज रहे हैं? एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से चालू है, व्हाट्सएप चालू है, मैसेजेस चालू है, क्या लिख रहे हैं? उस लिखने में पवित्रता। क्या परमात्मा प्रेम के संदेश दिए जा रहे हैं या फिर कुछ और संदेश दिए जा रहे हैं? रूसने रूठने के मनाने के उसी में लगे हुए, कभी वो नाराज, कभी ये नाराज, कभी ये नाराज, कभी वो नाराज। एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से गया, अभी तक उत्तर आया नहीं, आएगा आएगा, इंतजार, अब तो आएगा, अब तो आएगा। अब ऑनलाइन अभी आ सकता है, अभी भी नहीं आ रहा है, डबल टिक हो गया है, अभी भी देखा पर नहीं आ रहा है, जरूर कुछ है। तो ऐसी 21 प्रकार की पवित्रता। फिर से रिवाइज करते, फिर एक ब्रेक होगा और फिर दूसरी क्लास। मन ही मन में डायरी बंद करके 21 बातें रिवाइज करेंगे सभी, मन ही मन में कितनी याद आती है देखो। ओम शांति। किसी ने लिखे हैं पॉइंट्स तो अच्छा होगा, आके आप ही सुनाओ, एक बार रिवाइज कराओ। इनको माइक दे दीजिए, उसके बाद में जो ब्रेक होगा उसमें आपको यहीं पर, यहां से उठ के नहीं जाना है, संदीप भाई एक्सरसाइज कराएंगे थोड़ी सी, एक दो तीन मिनट। तो ये सारी पॉइंट्स सुनेंगे, जिनकी मिस हुई है वो फिर से उसको नोट कर लेंगे। शुरू। फर्स्ट,
संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता,
आवाज,
संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध में पवित्रता, चलन की पवित्रता, तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें, भाव और भावना, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, विचार की पवित्रता, स्पर्श की पवित्रता, खाने की पवित्रता और लिखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता।
हो गए, विचार संकल्प में आ गया, विचार अलग नहीं है, संकल्प में आ गया। ओम शांति।
ओम शांति। एक एक्सरसाइज तो पहले कर लेते हैं। आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी ना? कई जगह मुंह खुला रह गया, कई जगह दिल में धड़कन बढ़ गई, हाय ये भी पाप होता है, ऐसा भी खराबी होती है, ऐसा ऐसा भी सोचा आपने, लेकिन अंदर से लगा कि कुछ हिल रहा है। हिल रहा है तो ठीक हो ही जाएगा, सुधार होगा ही, अमृत वेला भी पावरफुल होगा, भोग लगाना भी शुरू होगा, पवित्रता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हर भट्टी से कुछ ना कुछ फायदा होता ही है, तो इससे कुछ ज्यादा होने वाला है। इसीलिए दिल से धन्यवाद करें जो आवाज मधुबन तक जाए। ओम शांति। जितनी आपकी आवाज है उतनी नीचे वालों की भी आई है, पता है, इतना ही हॉल नीचे फुल, एकदम हाउस फुल चल रहा है, इसीलिए सभी बहुत प्यार से एक्सरसाइज करेंगे। जिसको बहुत मजबूरी हो वही उठे सिर्फ, बाकी अपनी सीट छोड़कर जाएगा तो अगली बार मिलेगी नहीं सीट, उम्मीद नहीं है कि सीट मिले, इसीलिए कोई सीट ना छोड़े, और एक सीट छोड़े तो दो पहरेदार बिठाए उसके ऊपर, ठीक है। तो भोजन बहुत प्यार से करेंगे अगली क्लास के बाद, अभी तो इसलिए थॉट दिया कि थोड़ा मन खुश हो जाए ना, भोजन मिलेगा और कितनी खुशी होती है माताओं को जब बना बनाया मिले, सिर्फ थाली उठानी और चलना है, ऐसा लगता है मायके आए हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और लेकिन कुछ माताएं धूप सेकेंगी 200-300, बाकी भोजन करेंगी, फिर उधर पूरा होता जाएगा धीरे धीरे, उठ के भोजन की व्यवस्था अच्छी बनी रहे इसके लिए ये सब है। तो आप सब समझदार हैं, आपके घर में मेहमान ज्यादा आते हैं तो आप कैसे करते हैं, ये तो ज्यादा नहीं है, ये तो सैलाब है, बाढ़ आई हुई है आज, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है इतना बड़ा परिवार देखकर,